संयुक्त राष्ट्र रेडियो से प्रस्तुत है समाचार परिक्रमा। मैं हूं महबूब खान। 26 जून 2020 के साप्ताहिक बुलेटिन में शामिल है। शुक्रवार को मनाया गया यूएन चार्टर दिवस। कोविड-19 महामारी से निपटने में यूएन प्रयासों पर भी एक रिपोर्ट। मानवाधिकार विशेषज्ञों ने भारत में नागरिकता अधिनियम का विरोध करने पर गिरफ्तार किए गए लोगों की स्थिति पर जताई चिंता, उनकी रिहाई का आग्रह भी। दक्षिण एशिया में कोविड-19 के फैलाव से लगभग 60 करोड़ बच्चों की जिंदगियों पर बड़ा खतरा, यूनिसेफ की भारत प्रमुख के साथ खास बातचीत। और कोविड-19 अपडेट के साथ साथ होंगे कुछ अन्य समाचार भी। हम आपको याद दिला दें कि विश्व परिप्रेक्ष्य वाली मल्टीमीडिया सामग्री के लिए आप हमारी वेबसाइट पर आना ना भूलें। पता है news.un.org/hi। अपने मोबाइल फोन पर हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं जिसका नाम है यूएन न्यूज रीडर। हमारा न्यूज़लेटर सब्सक्राइब करके भी आप ताज़ा समाचार खुद ब खुद हासिल कर सकते हैं। अब समाचार विस्तार से। वैश्विक महामारी कोविड-19 के कारण विश्व में भारी उथल पुथल हुई है और स्वास्थ्य के साथ साथ आर्थिक व सामाजिक जीवन व्यापक स्तर पर प्रभावित हुआ है। संयुक्त राष्ट्र इन हालात में लोगों की जिंदगियां बचाने, वायरस पर काबू पाने और आर्थिक संकट के दंश को कम करने के लिए अनेक मोर्चों पर मजबूती से प्रयासों में जुटा है। यूएन महासचिव अंतोनियो गुटेरेश ने कोरोना वायरस संकट पर यूएन द्वारा की गई जवाबी कार्रवाई पर गुरुवार को रिपोर्ट जारी करते हुए ये जानकारी दी है। ये रिपोर्ट 26 जून को यूएन चार्टर दिवस की पूर्व संध्या पर डिजिटल माध्यमों पर जारी की गई। महासचिव गुटेरेश ने कहा कि यूएन चार्टर के 75 वर्ष ऐसे लम्हे में पूरे हो रहे हैं जब दुनिया एक जोखिम और उठा पटक भरे दौर से गुजर रही है। महासचिव ने यूएन चार्टर के वजूद में आने के समय को याद करते हुए कहा,
The charter was adopted as the Second World War was in its final months and winding down. We mark the anniversary of that milestone as global pressures are spiraling up. The charter brought rules and hope to a world in ruins.
महासचिव कह रहे थे कि चार्टर पर ऐसे समय में दस्तखत किए गए थे जब दूसरा विश्व युद्ध खत्म होने के कगार पर था। हम चार्टर की 75वीं वर्षगांठ ऐसे समय में मना रहे हैं जब दुनिया अनेक तरह के दबावों का सामना कर रही है। चार्टर ने तबाही के ढेर पर बैठी दुनिया में नियम और उम्मीदें बहाल किए थे। चार्टर आज भी हमारी दुनिया के लिए मापदंडों की बुनियाद बना हुआ है। एक ऐसी दुनिया जो महामारी से जूझ रही है, व्यापक भेदभाव का दंश झेल रही है और जलवायु परिवर्तन के खतरे में घिरी है। गरीबी, असमानता और युद्ध व संघर्षों के भी डर के साए में जी रही है। महासचिव अंतोनियो गुटेरेश के शब्द। इस रिपोर्ट में कोविड-19 को विश्वव्यापी महामारी के रूप में परिभाषित किए जाने के बाद से अब तक हुई कार्रवाई का ब्यौरा दिया गया है। साथ ही ये रिपोर्ट वैश्विक एकजुटता और एकता के जरिए बेहतर ढंग से पुनर्बहाली का एक रोड मैप भी पेश करती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस एडेनोम गेब्रियसस ने शुक्रवार को जिनेवा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि कोविड-19 संक्रमण का खतरा सभी को है, इसलिए उसकी रोकथाम व इलाज के औजारों की उपलब्धता भी सभी के लिए सुनिश्चित करनी होगी। कोविड-19 के मामले अब तेजी से बढ़ रहे हैं और जल्द ही संक्रमित लोगों की संख्या 1 करोड़ के आंकड़े को छू सकती है। एक अपडेट के साथ सचिन गौड़।
कोविड-19 के अब तक लगभग 95 लाख मामलों की पुष्टि हो चुकी है और 484,000 से ज्यादा मौतें हुई हैं। जल्द ही संक्रमितों का आंकड़ा 1 करोड़ को पार कर सकता है, जो इसके फैलाव में आई तेजी, उसकी गंभीरता और व्यापकता को दर्शाता है। संक्रमण के लगभग 40 लाख मामले पिछले महीने ही सामने आए हैं, जबकि महामारी फैलने के पहले महीने में महज 10,000 मामलों की पुष्टि हुई थी। विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus.
It's clear that to bring COVID-19 under control and to save lives, we need.
यह स्पष्ट है कि कोविड-19 पर काबू पाने के लिए असरदार निदान, वैक्सीन और उपचार की जरूरत है और ऐसा अभूतपूर्व स्तर पर अभूतपूर्व गति से किया जाना होगा। और ये भी स्पष्ट है कि सभी लोगों पर कोविड-19 से संक्रमित होने का जोखिम है, इसलिए सभी के पास इन औजारों तक पहुंच होनी चाहिए ताकि इसकी रोकथाम, परीक्षण और उपचार किया जा सके, न सिर्फ उनके लिए जो इसका खर्चा उठा सकते हैं। इसी उद्देश्य से यूएन स्वास्थ्य एजेंसी ने हाल ही में एक्सेस टू कोविड-19 टूल्स एक्सेलरेटर पहल को शुरू किया था, जिसका लक्ष्य इस महामारी पर काबू पाने के प्रयासों में तेजी लाना है। कोविड-19 के खिलाफ जैसे ही असरदार और जीवन रक्षक वैक्सीन और इलाज विकसित होंगे, उन्हें इस पहल के माध्यम से तेजी से मुहैया कराया जा सकेगा।
संयुक्त राष्ट्र के स्वतंत्र मानवाधिकार विशेषज्ञों ने भारत सरकार से उन सभी मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को तत्काल रिहा करने की अपील की है जिन्हें नागरिकता कानून में हुए संशोधन के विरोध में प्रदर्शन करने के लिए गिरफ्तार किया गया है। नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी CAA में भारत के अनेक पड़ोसी देशों से विशिष्ट धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए भारतीय नागरिकता हासिल करने की प्रक्रिया सरल और शीघ्रता से आगे बढ़ाने का प्रावधान है, लेकिन मुसलमानों को इसके दायरे से बाहर रखा गया है। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 में भारतीय संसद द्वारा पारित होने और राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद कानून बना था। दिसंबर 2019 में अधिनियम के पारित होने के बाद भारत में विभिन्न धर्मों व आस्थाओं के लोगों ने विरोध प्रदर्शन किए थे, जिनका मानना था कि इस अधिनियम से भारतीय संविधान की धर्मनिरपेक्ष नींव का हनन होता है। इनमें सबसे चिंताजनक मामला दिल्ली में एक गर्भवती महिला छात्र सफूरा जरगर का है, जिन्हें 2 महीने से ज़्यादा समय तक कथित रूप से जिन हालात में रखा गया उनकी तुलना एकांत कारावास से की जा सकती है। मानवाधिकार विशेषज्ञों के मुताबिक उन्हें अपने परिवार और वकील से नियमित रूप से संपर्क रखने की अनुमति नहीं दी गई और न ही पर्याप्त चिकित्सा देखभाल और आहार दिया गया। सफूरा जरगर को आखिरकार गर्भावस्था के 6वें महीने में मानवीय आधार पर 23 जून 2020 को जमानत मिली है। विशेष रिपोर्टर ने कहा कि इनमें से अनेक कार्यकर्ता छात्र हैं और ऐसा प्रतीत होता है कि उन्हें महज नागरिकता संशोधन अधिनियम की आलोचना करने और उसके खिलाफ प्रदर्शन करने के अपने संवैधानिक अधिकार का इस्तेमाल करने के लिए गिरफ्तार किया गया है। उनकी गिरफ्तारी स्पष्ट रूप से भारत के जीवंत नागरिक समाज को एक कपकपा देने वाला यह संदेश देने के लिए की गई है कि सरकारी नीतियों की आलोचना को सहन नहीं किया जाएगा। मानवाधिकार विशेषज्ञों ने भारत सरकार से आग्रह किया है कि तत्काल सभी मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को रिहा कर दिया जाए जिन्हें फिलहाल मुकदमे से पहले हिरासत में बिना पर्याप्त साक्ष्यों के अभाव में रखा गया है। इनमें से अनेक मामले ऐसे हैं जिनका आधार महज CAA की भेदभावपूर्ण रूप की आलोचना करने वाले उनके भाषण हैं। UN विशेषज्ञों का कहना है कि प्रदर्शनकारियों को जमानत न मिलने देने के लिए सरकार आतंकवाद निरोधक या राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े कानूनों और प्रक्रियात्मक पुलिस शक्तियों का इस्तेमाल कर रही है। ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं जिनके तहत भारी सजा दिए जाने के प्रावधान हैं। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को की महानिदेशक ऑड्री अजोले ने विरोध प्रदर्शनों की कवरेज कर रहे पत्रकारों के खिलाफ हिंसा की बढ़ती घटनाओं पर चिंता जताई है। यूनेस्को प्रमुख ने जोर देकर कहा है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी लोकतंत्र का एक बेहद अहम अंग है और पत्रकारों द्वारा ऐसी घटनाओं की रिपोर्टिंग प्रेस की आज़ादी और सूचना के अधिकार के लिए अति आवश्यक है, इसलिए उनके काम करने की आज़ादी और सुरक्षा सुनिश्चित किया जाना जरूरी है। ज्यादा जानकारी के साथ प्रतिष्ठा जैन।
हाल के दिनों में विभिन्न कारणों से दुनिया के अनेक देशों में प्रदर्शनों की लहर उठी है, लेकिन उनसे कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिम्मेदार एजेंसियों द्वारा पत्रकारों पर अत्यधिक बल प्रयोग की समस्या की ओर भी ध्यान गया है। रिपोर्टों के अनुसार प्रदर्शनों की कवरेज में जुटे पत्रकारों की मौतें हुई हैं, वे रबड़ की गोलियों से घायल हुए हैं और अनेक पत्रकारों को हिरासत में लिए जाने और उनके उपकरण तोड़े जाने या जब्त किए जाने के मामले भी सामने आए हैं। UN एजेंसी और अन्य साझीदार संगठन इस संबंध में नियमित रूप से पत्रकारों से संपर्क रखने वाले अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान करते हैं ताकि वे लोकतंत्र में मीडिया के योगदान का सम्मान और अभिव्यक्ति की आज़ादी के बुनियादी मानवाधिकार को समझ सकें, उसका सम्मान कर सकें।
संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त मिशेल बाशलेट ने देशों और व्यवसायों से आग्रह किया है कि डिजिटल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते समय ये सुनिश्चित किया जाना जरूरी है कि इससे लोगों के शांतिपूर्ण ढंग से एकत्र होने, अभिव्यक्ति की आज़ादी और सार्वजनिक मुद्दों में भागीदारी से संबंधित बुनियादी अधिकारों का हनन न हो। गौरतलब है कि हाल के समय में चेहरे की शिनाख्त करने यानी फेशियल रिकॉग्निशन सहित अन्य टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़ा है। पुलिस प्रदर्शनकारियों पर काबू पाने के लिए लाठीचार्ज, स्प्रे और आंसू गैस का कई दशकों से इस्तेमाल करती रही है, लेकिन टेक्नोलॉजी बेहतर होने के बाद अब कम घातक हथियार भी काम में लाए जा रहे हैं। इनमें इलेक्ट्रिक हथियार मसलन टेजर गन, ड्रोन, रबड़ या प्लास्टिक की गोलियां और ऐसी स्वचालित प्रणालियां शामिल हैं जिनसे आंसू गैस छोड़ी जा सकती है। UN मानवाधिकार उच्चायुक्त ने कहा कि लोग नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल संगठित होने, शांतिपूर्ण प्रदर्शनों का आयोजन करने और उनके बारे में जानकारी हासिल करने, नेटवर्क स्थापित करने में कर रहे हैं जिससे सामाजिक स्तर पर बदलाव आ रहा है। लेकिन उनका इस्तेमाल प्रदर्शनकारियों के अधिकारों को सीमित करने, हनन करने, निगरानी करने, नज़र रखने और निजता के उल्लंघन में भी किया जा सकता है। कोविड 19 महामारी दक्षिण एशिया क्षेत्र में भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश सहित अन्य देशों में तेजी से फैल रही है, जहां विश्व की करीब एक चौथाई आबादी रहती है। इससे दक्षिण एशियाई देशों में बच्चों के स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य क्षेत्रों में हुई प्रगति पर बुरा असर पड़ रहा है। मंगलवार को संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ ने एक रिपोर्ट जारी की, जिसमें सभी देशों से तुरंत कार्रवाई करने का आग्रह किया गया है। इस रिपोर्ट के मुख्य तथ्यों के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए यूएन हिंदी न्यूज़ की अंशु शर्मा ने भारत में यूनिसेफ की प्रतिनिधि डॉक्टर यास्मीन अली हक से बातचीत की।
कोविड 19 संकट का दक्षिण एशिया के बच्चों पर पड़ रहे असर को लेकर संयुक्त राष्ट्र बाल कोष ने मंगलवार को एक नई रिपोर्ट जारी की है। इसमें किन देशों पर ध्यान केंद्रित किया गया है और यूनिसेफ के लिए दक्षिण एशिया का इलाका इतना अहम क्यों है?
As you might know that a large proportion of children in the world are in South Asia, और हमारे साउथ एशिया के जो आठ देश हैं, हम अगर सब जोड़ लें तो जो बर्डन है मॉर्टेलिटी मॉर्बिडिटी बच्चों का, it's at least a quarter if not more of it. इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम ध्यान से देखें कि कोविड बच्चों को डायरेक्टली कम इफेक्ट करता है, लेकिन कोविड का जो सेकेंडरी इफेक्ट होगा उसका असर बच्चों पर बहुत पड़ेगा।
तो इस रिपोर्ट में क्या प्रमुख बातें कही गई हैं?
बच्चों के लिए जो लाइफ सेविंग सर्विसेज हैं, जैसे कि इम्यूनाइजेशन, उनका जब न्यूमोनिया या डायरिया होता है उसका ट्रीटमेंट, मेल न्यूट्रिशन डिटेक्शन और मेल न्यूट्रिशन का ट्रीटमेंट, उस इम्पैक्ट का मेजरमेंट भी किया गया है। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी ने एक मॉडलिंग सर्वे किया है जिसपे उन्होंने एस्टिमेट किया कि हर दिन सारी दुनिया में 6,000 बच्चे ज्यादा मर सकते हैं क्योंकि उनको ठीक सर्विसेज या न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा।
तो लॉकडाउन की वजह से करोड़ों बच्चों को घर पर बैठकर ही पढ़ाई करने के लिए मजबूर होना पड़ा है, लेकिन जो गांव के इलाके हैं वहां हालात बहुत चिंताजनक हैं क्योंकि वहां अक्सर इंटरनेट और बिजली सेवाओं का ही अभाव रहता है, तो इससे बच्चों की पढ़ाई को बहुत नुकसान हुआ है। तो तालाबंदी के इस असर को सभी देश कैसे पूरा कर पाएंगे?
आप इंटरनेट की बात कर रहे हैं, ओनली अ फ्रैक्शन ऑफ children and families, like you said, especially gaon mein, tribal areas mein, unko internet ka access bhi nahi hai unka. Aur padhai sirf screen par dekhkar hi nahi, it has to be blended. Face to face ki baat bhi hai. It's important to have that additional face to face contact or personal contact. मैं उदाहरण दे सकती हूँ, उड़ीसा में यंग वॉलंटियर्स को लेकर प्रोग्राम हो रहा है कि वो कैसे अपने इलाके के बच्चों के साथ बैठकर स्कूल शुरू होने के आगे कुछ लर्निंग एक्टिविटीज में एंगेज करें, सो दैट वी डोंट रिलाई जस्ट ऑन टेक्नोलॉजी। इंडिया में बहुत सारे कम्युनिटी रेडियो हैं जिनका रीच बहुत दूर है, थ्रू देम वी कैन ऑल्सो रीच चिल्ड्रन एंड हेल्प देम with the learning. So COVID is also pushing us to look at alternatives. और क्या कर सकते हैं हम? ये question हमको बार-बार करना चाहिए कि और क्या?
साथ ही ये आशंका भी बढ़ रही है कि कोविड 19 से पहले स्कूली शिक्षा से वंचित बच्चों की संख्या में बढ़ोतरी हो सकती है, वो बाल मजदूरी के भी शिकार हो सकते हैं, या फिर घरों तक सीमित रहने के कारण बच्चों में डिप्रेशन बढ़ सकता है। इन सब के बारे में क्या कुछ कहा गया है रिपोर्ट में?
घर में जो स्ट्रेस हो रहा है उसका, क्योंकि काम बंद है, लोगों का जाना यहाँ जाना बंद है, बच्चों का स्कूल बंद है, और सब कुछ मिलकर एडल्ट के ऊपर, जैसे हम सब कुछ स्ट्रेस में हैं, बच्चे भी उस तरह स्ट्रेस्ड होते हैं, दे रिफ्लेक्टेड डिफरेंटली, उनका बिहेवियर चेंज हम देख सकते हैं।
इस इंटरव्यू का विस्तृत संस्करण आप हमारी वेबसाइट पर भी सुन सकते हैं, पता है news.un.org/hi। तो आज के कार्यक्रम में बस इतना ही, अब महबूब खान को इजाजत दीजिए।